कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचरी जमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचरी जमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्रीधर वल्लभ गिरीवर हरि गोपीजन वल्लभ गिरीवर हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आइए आएंगे सब राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण अरे हरि वा बोलिए राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि हरि बाल जय राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामचंद्र भगवान की जय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नवमी की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय और प्रेमानंदे हरि हरि रो ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् वितांश्च जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतेर्गतिः मदसर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुर्स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते की राम चंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री राम चंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्री राम चंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री राम चंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। कूजन्तं राम रामेति अक्षरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखा वाल्मीकि वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान राम सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय सीताराम। बोलिए ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान ओ जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम ओ रघुपति राघव राजा राम ओ पतित पावन सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम
Microphone. हरे कृष्णा. आज क्या है? भगवान रामचंद्र जी का प्रागट्य. श्रील प्रभुपाद इस दिन में दशावतार स्तोत्र गाते थे. हम थोड़ा सा आधा दशावतार स्तोत्र गाएंगे.
प्रलय पयोधि जले हितवान शिवेदम प्रलय पयोधि जले विहितवहित्रचरित्रमखेदम विहितवहित्रचरित्रम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसती दर्शन शिखरे धरणी तव लग्न
असति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनी कलंक कलैव निमग्न शशिनी कलंक कलैव निमग्न केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृत शुकर रूप कर कमल वरे नख मद्भुत सिंह ललित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृत अभी आधी आधी लाइन गाता हूँ सब लोग गा सकें खलयसि विक्रमणे बलिम खलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन बलिम अद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन पदनख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव गीता अब ये रामचंद्र जी का है वितरषि दिक्षुरणे बोलो वितरषि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुख मौलि बलिम रमणीयम् दशमुख मौलि बलिम रमणीयम् केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे पितर शिदिक शुक्रणे दिक्पति कमनीयम् पितर शिदिक शुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुख मौलि बलिम रमणीयम् दशमुख मौलि बलिम रमणीय केशवधीत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीत राम शरीर वह शिव पुषि विशदे वसनम जलदाभम ये बलराम जी के बारे में वह शिव पुषि विशदे वसनम जलदाभम वह शिव पुषि विशदे वसनम जलदाभम हलहति बीति मिलित जमुनाभम हलहति बीति मिलित जमुनाभम केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भले चन्निवाहनिदने कलय शिखर वालम भले चन्निवाह निदने कलय शिखर वालम धूमकेतुमेव किमपि करालम् धूमकेतुमेव किमपि कराल केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे श्री जय देव कवेरिदम् उदितमुदारम् श्री जय देव कवेरिदम् उदितमुदारम् शृणु सुखदम् शुभदम् भवसारम् शृणु सुखदम् शुभदम् भवसारम् केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते मलेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः
मलेच्छा मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
भगवान रामचंद्र जी अवतार के विषय में ओ केशव ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ओ लॉर्ड हरि हु अस्यूम द फॉर्म ऑफ रामचंद्र ऑल ग्लोरीज टू यू। In the battle of Lanka, we destroy the ten-headed demon Ravana and distribute his heads as a delightful offering to the presiding deities of the ten directions headed by Indra. This action was long desired by all of them who were much harassed by this monster. He Keshava, He Jagadish, He Hari, Aapne Bhagavan Ramachandra Ji ka swarup dharan kiya hai. आपकी जय हो। लंका के युद्ध में आपने रावण के दसों मुखों को दस दिशाओं को अर्पण किए। इंद्र आदि सभी देवता उससे प्रसन्न हुए क्योंकि बहुत लंबे समय से वे चाहते थे कि रावण के अत्याचार से उनकी मुक्ति हो। उनको मुक्त करके आपने उनको जीवन दान दिया। भगवान रामचंद्र जी की जय। श्री रामनवमी महामहोत्सव की हरे कृष्ण। नो यू गो अहेड देन सिंस सार्वभौम इज नॉट देयर आउट फिर लेट हां वेल आई वांटेड टू रीड अ लिटिल बिट फ्रॉम द भागवतम रीड इट नाउ और लेटर। और मे बी I thought first you give your lecture, then I'll give. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 10 भगवान राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए, रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश सांक्षांश से चार रूप धारण करके राजदशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। बोलो तस्यापि भगवानेश
साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितये सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः भगवान राम के चार पुत्र हुए, उनके नाम थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हे परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र चतुर्दशी ऋषियों ने बहुत बार वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसको सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे मन मन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उसे सहन नहीं होता था। वही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तो हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट करके विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौं में तन गई, जिसको देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। उसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। गुरुवर से त्यक्त राज्यो व्यचरत अब अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम सुजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षरपणख्या प्रिय विरह रुषा आरोपित भ्रू विजृंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलद वहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के पक्ष में लक्ष्मण के सामने ही मरीचादि राक्षसों को मार डाला। ये सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। हे परीक्षित, जनकपुरी में सीता जी का स्वयं हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते गन्ने को तोड़ डालता है। भगवान जी ने अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है। ऋषि लक्ष्मी जी सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनकी श्री परशुराम जी से भेंट हुई। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश बीज से रहित कर दिया था। भगवान उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्हें प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की, क्योंकि उन्हें किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षसराज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर दूषण त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों की जो संख्या में 14,000 थे, हाथों में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम नष्ट कर डाला। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। हे परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा और धीरे धीरे भगवान की वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उससे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। तो भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विवेह नंदिनी सुकुमारी सीताजी को हर लिया। तदनंतर वे अपनी प्राणप्रिय सीताजी से बिछुड़ कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दिन की भांति घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगत सेवा कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और उसके अनंतर सुग्रीवादी वानरों से मित्रता करके वाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राणप्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। यहाँ स्पष्ट लिखा है भगवान श्री शंकर और ब्रह्मा जी जिनके चरण कमलों को पूजते हैं। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महनम कबंधम संख्यम विदाय कपिबीर दयिता गतिम तय बुध्वार्थवालिनी हते प्लगवेन्द्र सैन्य वेलामगात मनुजो अज भवार्चितांग्री। वहां उपवास और प्रार्थना से समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और कहने लगा हे अनंत हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जाने भी कैसे। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आदि कारण जगत के समस्त परिवर्तनों में एकरस रहने वाले हैं। इस तरह से समुद्र ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे तो उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टाने थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव नील हनुमान आदि प्रमुख वीरों वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उसमें वानराज की सेना में लंका को सैर करने और खेलने के स्थान अन्न के गोदाम खजाने दरवाजे फाटक सभावन छज्जे पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्हें वहाँ की वेदी ध्वजाएँ सोने के कलश और चौराहे तोड़फोड़ डाले। इस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस रावण ने निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक प्रहस्त अतिकाय विकंपन आदि अपने सब अनुचरों पुत्र मेघनाद अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की विशाल सेना तलवार त्रिशूल धनुष प्रास रुष्टि शक्ति बाण भाले खड़ग आदि शस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव लक्ष्मण हनुमान नंदमादन नीलांगद जामवन और पन्नसारी वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना हाथी रथ घुड़सवार पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए। राक्षसों को वृक्ष पर्वत शिखर गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल सीताजी के स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। तो राक्षस रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हो जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया। उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा नीच राक्षस तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राणप्रिय पत्नी को हर लाए, तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारा ऐसा निर्लज निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्ता बन के अभिमानी को फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे आज मैं तुम्हें तुम्हारी करने का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अपने दसों मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, उस समय उसके पूर्वजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदनंतर हजारों राक्षसियाँ मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी, रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों की हृदय से लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। ये थोड़ा फिनिश कर दूं, थोड़ा 10-15 श्लोक। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था तो आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा है कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं, और ये प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार के संपन्न थे, किसी भी ये बात की कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वश हो गए और ये नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है, उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था, आज हम सब तथा सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधों का आहार बन रहा है। अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। ये सब आपकी ही ना समझी और कामुकता का फल है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुशलाधीश भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि पीड़ित अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राणप्रिया अर्धांगिनी सीता जी को अत्यंत दीनावस्था में देखकर राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया, मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। उसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उनमें बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर जब भगवान को यह मालूम पड़ा कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जव का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछा कर सोते हैं, उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है, तभी बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण करके परम करुणाशील भगवान का हृदय भर गया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तो वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए गए। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगलगान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादि ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए रंग बिरंगे ध्वजों से सजे हुए रथ, सुनहरे साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े, सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे। इसके बाद अयोध्या आकर क्या किया, इसका वर्णन श्रीमद्भागवतम में है, 10वां अध्याय 9वां स्कंद। कभी समय मिले इसको पढ़ लेना, संक्षेप में पूरी रामायण पढ़ने को मिल जाएगी। श्रील प्रभुपाद की। अब हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी अपना मंतव्य देंगे। हरे कृष्ण।
पहले
गागर में सागर सुखदेव गोस्वामी भी रामायण कथा सुनाए, उसको हम लोग भागवत कहते हैं। नवस्कंद नवे स्कंद से प्रभु जी पढ़ रहे थे वही कथा जो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुनाए। भागवत भगवान के संबंधित जो भी है उसको भागवत कहते हैं। राम भी भगवान भी है और भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं के साथ भी श्री राम का संबंध है, फिर उनकी कथा भी फिर भागवत कथा हो जाती है। उसको अब जब अलग से कहते हैं तो उसको हम राम कथा या रामायण कहते हैं, लेकिन भगवान के संबंधित है तो रामायण भी भागवत ही है। जिसको सुखदेव गोस्वामी रामायण तो 24,000 श्लोक वाला रामायण, 500 सर्ग, 7 कांडों में विस्तृत ये रामलीला, सुखदेव गोस्वामी केवल 2 ही अध्यायों में समझाए। इसीलिए हमने कहा सागर गागर में, गागर समझते हो, गागर में भर दिया सारा रामायण का लीला का सागर, या संक्षिप्त रामायण ही सुनाए सुखदेव गोस्वामी। और राजा परीक्षित भी सुने, बड़े रामायण की कथा तो श्री कृष्ण भी यशोदा भी सुनाया करती थी श्री कृष्ण को। रात्रि के समय जब अपना लाला नींद सुलाने के पहले थोड़ा दूध पियो थोड़ा दूध पियो, नहीं नहीं कुछ कहानी सुनाओ, फिर यशोदा कृष्ण की कहानी सुना दी। एक रावण था, एक राक्षस था, और जैसे हम अभी सुन रहे थे, और राक्षस ने क्या किया, भिक्षाम देही करके तो आया एक ब्राह्मण के भाव में रूप में, लेकिन था वो राक्षस। यशोदा सुना रही है तो हुआ, सीता जब आगे बढ़ी तो हुआ वो था वैसे राक्षस, और उस राक्षस ने सीता का अपहरण किया। और कृष्ण जब इस बात को सुने तो जो यशोदा के गोद में बैठे या लेटे दूध तो पीने ही जा रहे तो छलांग मार के, क्या कहा तुमने, रावण कहा है, रावण, ए रावण। श्री कृष्ण आ गए राम के आवेश में, सुन रहे थे श्री कृष्ण सुन रहे थे राम की लीला यशोदा के मुख से, बाल श्री कृष्ण सुन रहे थे। तो हुआ राम का आवेश हुआ और उस राक्षस का वध करने के लिए ए लक्ष्मण से पुकारने लगे, कहाँ है वो रावण? सारे संसार को रुलाने वाला रावण मतलब कौन? जो औरों को रुलाता है वो होता है रावण। तो वैसे रुलाने वालों में अग्रगण्य तो रावण रहा, लेकिन और भी उनके चेले, उनके पार्षद, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कुछ कम नहीं है, तो उनको भी वैसे रावण कहा जा सकता है। आज का दिन नौ लाख वर्ष पूर्व, आज का दिन सारे संसार भर में मनाया जा रहा है, वो शुभ दिन, वो पवित्र दिन। ये दिन हर वर्ष ये दिन पवित्र दिन के रूप में उगता है या प्रस्तुत होता है। राममय बन जाता है ये दिन, पवित्र बन जाता है ये दिन, ये तिथि, ये नवमी। आज आप कुछ विशेष अनुभव करें, कोई विशेष दिन है लगा आप सब इस दिन में कुछ विशेष शक्ति है, कुछ विशेष मांगल्य का ये दिन है, इसलिए आप मंगल आरती में भी आ गए और आप एक विशेष मूड में हो आज। ये मूड राम के कारण है या इस दिन को भगवान ने जो विशेष दिन बनाया, तो हर वर्ष ये दिन एक विशेष दिन, एक पवित्र दिन, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये दिन आज का नवमी की तिथि हमें श्री राम के पास पहुंचाती है या उनका सानिध्य हमको प्रदान करती है, ये राम नवमी। वो दिन तो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन वो बेला, वो समय, राम के समय, जन्म का समय तो मध्याह्न के समय दिन में, और फिर मध्याह्न के समय श्री राम प्रकट होते हैं, सूर्य वंश में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए जब सूर्य का साम्राज्य, दिन में सूर्य का साम्राज्य होता है, तो दिन में श्री राम प्रकट हुए। श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए तो रात्रि के समय चंद्रमा का साम्राज्य होता है। चंद्रमा को वैसे रजनीश भी कहते हैं, वो रजनीश नहीं, उनका स्मरण नहीं करना, रजनी के ईश, रजनी मतलब रात्रि, उसके स्वामी चंद्रमा है, तो रात्रि के स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रवंश में प्रकट होने वाले श्री कृष्ण मध्य रात्रि को प्रकट हुए, तो सूर्यवंशी श्री राम मध्याह्न के समय प्रकट होते हैं। आज का दिन, आज की नवमी तो रामनवमी, रामनवमी, रामनवमी की, रामनवमी के नाम से ही ये प्रसिद्ध है या हम जानते सुनते हैं, लेकिन हम इसे भूल बैठे हैं, भूले हुए इस बात को कि आज के ही दिन केवल राम का ही जन्म नहीं हुआ, और किसका जन्म हुआ? लक्ष्मण का जन्म भी आज का ही है। और किसका जन्म हुआ? भरत का जन्म आज ही हुआ। और शत्रुघ्न का जन्म आज ही हुआ। तो आज केवल राम नवमी नहीं है, आज लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी भी आज ही है। अयोध्या धाम की, अयोध्या में आज के दिन दशरथ नंदन बने। राम दशरथ नंदन है, लक्ष्मण दशरथ नंदन, भरत और शत्रुघ्न भी दशरथ नंदन। तीन माताओं ने चार पुत्रों को जन्म दिया आज के दिन। और फिर ये चारों के चार विष्णु तत्व है। फिर केवल राम ही भगवान नहीं है। कल रात्रि को यशोमती नंदन प्रभु सुना रहे थे और वे कहते कैसे श्रील प्रभुपाद पुनः पुनः कहे राम महामानव नहीं थे, जैसे औरों की ऐसी समझ होती है महापुरुष या महामानव। राम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, राम भगवान है। तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भी भगवान है, लक्ष्मण शंकरशन है। और भरत और शत्रुघ्न कौन है? प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। तो ये चारों भगवान है, चारों विष्णु है, ये चारों विष्णु तत्व है। तो हम कभी कभी हनुमान को भगवान मानते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण भरत हमें ना, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान, इस बात का स्मरण नहीं होता। तो जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। तो जहाँ तक तत्व जानने की बात है और भगवान कहे, फिर भगवान कहे तो फिर राम भी वैसा ही कह सकते हैं। मेरा जन्म कैसा है? दिव्य है। मेरी लीलाएं कैसी है? दिव्य है। जो भी इसको तत्वतः जानता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी। आज के दिन ये चार भगवान तत्व समझना चाहिए, चारों भगवान आज के दिन प्रकट हुए। और रामायण में केवल राम की लीला नहीं है, लक्ष्मण की भी लीलाएं हैं, भरत की भी लीलाएं हैं और शत्रुघ्न भी की लीलाएं हैं। जिन लीलाओं का प्रारंभ आज से हुआ या आज से प्रकट लीला प्रारंभ हुई, अयोध्या में भगवान की नित्य लीला संपन्न होती रहती है। आज के दिन पर्दे को खोल दिया, अभी आप ये संसार कुछ देख सकता है इन लीलाओं को। और आज से फिर गणना शुरू हुई और 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर रहे। नाना अवतार मकरोत भुवनेशु, किंतु भगवान के नाना अवतार है, लेकिन कोई भी अवतार 11,000 वर्ष या उससे अधिक वे लीला किए, ऐसा तो कोई उदाहरण या समझ या नहीं है। आपको है? श्री कृष्ण रहे कितने साल? 125 वर्ष। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स। नरसिंहदेव भगवान अभी कुछ घंटों के लिए
आए कोई निमित्त, कोई निमित्त नैमित्तिक लीला। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उस लीला को नैमित्तिक निमित्त बन जाता है, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। तो वह उसी भगवान प्रकट हुए, केशव धृता नरहरि रूपा, ऐसे दस अवतार स्तोत्र को हम श्रवण कर रहे थे। तो हर जगह का केशव धृता मीन शरीर, केशव धृता वराह रूप, केशव धृता नरसिंह रूपया नरहरि, केशव धृता राम शरीर, केशव धृत मतलब केशव ने धारण किया, ये सारे रूप केशव ने धारण किए, केशव श्री कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सभी उत्पन्न होता है। यहां तक अवतार भी कृष्ण के अवतार, राम कृष्ण के अवतार, वराह कृष्ण के अवतार, नरसिंह कृष्ण के अवतार, कृष्ण के। तो किसी भी रूप में भगवान वैसे इतने हजारों वर्षों तक नहीं रहे जैसे श्री राम रहे। और कई अवतार है, राम अवतार में तो राम के माता पिता है, श्री कृष्ण अवतार में भी है, गौरांग महाप्रभु भी उनके माता पिता है, लेकिन केशव धृत मीन शरीर, मीन अवतार के कोई माँ बाप है? वराह भगवान के कोई माता पिता है? नरसिंह भगवान हो सकता है, वो जिस खंभे से वे निकले स्तंभ से, वही माता उनकी, वही पिता उनके। तो कुछ अवतार है इन एंड आउट, क्विकली इन एंड आउट आते हैं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए लीला संपन्न होती है अंतर्धान में। लेकिन इस राम लीला में बड़े भगवान जन्म भी लिए, वैसे भगवान का जन्म से कोई संबंध नहीं है। भगवान को कहा है भगवान अजन्मा है, कैसे भगवान है? भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं है, क्योंकि कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो भगवान का कभी मृत्यु होती है? और भगवान मरेंगे तो आप जियोगे? हम 78 में हम वहां गए प्रभास क्षेत्र, जहां से श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, तो हम लोग ट्रैवलिंग पार्टी में गए थे। तो भगवान सरस्वती के तट पर कैसे बैठे थे और कैसे वहां से अंतर्धान हुए, तो वहां पर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था, और साइन बोर्ड पर लिखा था, हमारे साथ कुछ हमारे विदेश के गुरु बंधु भी थे, तो उसमें लिखा था गॉड डाइड हियर, गॉड डाइड हियर, भगवान की यहां मृत्यु हुई, भगवान के मृत्यु का स्थल। तो मेरे साथ हम भी सारे गर्मा गर्म हो गए, स्पेशली हमारे विदेश के डिवोटीज ने जब ये पढ़ा तो ऐसे आग बबूले हुए, कौन है लिखने वाला? बगल में आश्रम थे तो दरवाजे खटखटाना, एक या कोई हो सकता है जो जिम्मेदार है ऐसा लिखने के लिए, भगवान की मृत्यु यहां हुई लिखने वाले। तो भगवान की मृत्यु तो संभव नहीं है, क्या मरेगा? भगवान में कौन सा तत्व है जो मर सकता है?
जब भगवान सच्चिदानंद घन है, सत है, चित है, आनंद की मूर्ति है, तो कौन मरेगा उसमें से? सच्चिदानंद में क्या मरेगा? पृथ्वी आप तेज वायु आकाश है तो ये मरेगा या उससे अलग होगा, आत्मा अलग हो गई शरीर से। लेकिन केशव धृता राम शरीर, राम का शरीर ही राम है, राम की आत्मा परमात्मा ही उनका शरीर है, उनका शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। भगवान के विग्रह में, रूप में और शरीर में भेद नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान का विग्रह ही भगवान है, भगवान का रूप ही भगवान है। तो अयोध्या में भगवान अयोध्या जिस नगरी के राजधानी के राजाओं के साथ युद्ध करके उनको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, अयोध्या यह अजिंक्य, जिसको कोई जीत नहीं सकता, उस राज्य को या उस राजधानी को, वहां के राजाओं को, ऐसी यह अयोध्या नगरी मोक्षपुरी, सात मोक्षपुरिया है उसमें से एक है अयोध्या भी। और 9 लाख वर्ष पूर्व जिस अयोध्या के निर्माता साक्षात मनु ने स्थापित किया अयोध्या को, समृद्ध नगरी, वेल आजकल के टाउन प्लानिंग होता है तो लोग सोचते हैं कि टाउन प्लानिंग तो आजकल हम कर रहे हैं, पहले शायद नहीं होते थे, लेकिन वे अयोध्या टाउन को अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं कि 9 लाख वर्ष पूर्व भी क्या होता था, टाउन प्लानिंग होते थे। आजकल के लोग क्या समझ सकते हैं, कूप मंडूक जो है आजकल के लोग कैसे है, मेढक है, कूप में रहने वाले मेढक। मैं कल भी बता रहा था, जब मैं लॉस एंजलिस गया तो कुछ वर्ष पूर्व, तो लॉस एंजलिस की एनिवर्सरी मना रहे थे, बाइसेंटेनियल, तो वे लोग कह रहे थे कि, मुझे कह रहे थे कि ये शहर बहुत पुराना है, वो तो हिंदी में नहीं कह रहे थे, अंग्रेजी में कह रहे थे, दिस टाउन इज वेरी ओल्ड टाउन। तो हमने कहा कितना ओल्ड है, नो वेरी ओल्ड। तो हमने कहो कितना ओल्ड, उनका 200 years ओल्ड, 200 साल पुराना शहर है लॉस एंजलिस की। तो कहा 200 साल और कहा 9 लाख वर्ष प्राचीन शहर और नगरी, और उस नगरी का सौंदर्य, रमणीयता, और वहां की शोभा, वहां की मंद मंद हवा, कई सारे उद्यान और कई सारे तालाब सरोवर जिसमें कमल के पुष्प खिले हैं और हंस विचरण कर रहे हैं, वृक्षों में पक्षी चहक रहे हैं, गान कर रहे हैं, ऐसे ऐसा नगर, और उस नगर के नागरिक भी जेंटलमैन, जेंटल, सदगृहस्थ, सभ्य पुरुष, केवल नाम के ही जेंटल नहीं। आजकल तो जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन, या दीज आर बाथरूम्स, ये किसके लिए? फॉर जेंटलमैन। लेकिन वही जेंटलमैन जब उसके हवाई जहाज में चढ़ना होता है तो उसकी जांच पड़ताल होती है, सिक्योरिटी होती है, उसके नाखून से सीखा तक उसको, तो व्यक्ति कहते ना, आई मस्ट बी जेंटलमैन, आई जस्ट यूज दिस टॉयलेट, तो मेरी जांच पड़ताल सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता, आई मस्ट बी जेंटलमैन। लेकिन कोई भी रफियन हो सकता है, कोई भी रावण हो सकता है। तो आजकल तो जेंटलमैन तो नाम ही रहा, जेंटल, वेरी रफ। लेकिन 9 लाख वर्ष पूर्व वहां के नागरिक सदगृहस्थ, बड़े सभ्य पुरुष, धार्मिक, चरित्रवान, कोई लुच्चा लफंगा तो वहां था ही नहीं उस नगरी में। बी अवेयर ऑफ क्या, पिक पॉकेटर्स, ऐसे कई साइन नहीं थे। कुत्तों से सावधान, वहां पर क्या था, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, बहुत अंतर आ चुका है। 9 लाख साल भी तो बीत चुके हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसी थी वो नगरी और कैसे थे वे नागरिक और कैसे थे वे राजा दशरथ और कैसी थी उनकी प्रजा। राजा की होती प्रजा तो माता पिता जैसे अपने अपत्य को संभालते हैं, देखभाल करते थे, वैसे ही राजा भी संभालते थे अपनी प्रजा को। और राजा दशरथ ऐसे अयोध्या के राजा, जो कौशल देश में, अयोध्या कौशल्या भी, जहां की कौशल्या नंदन, जहां के वो कौशल प्रदेश में, या अयोध्या, दशरथ महाराज बड़े बड़े महा अतिरथी कहा। आपने सोचा होगा शायद महारथी बड़े होते, नहीं, महारथी से अतिरथी महान होता है। अतिरथी 10,000 महारथियों को परास्त कर सकता है, ऐसे अतिरथी थे दशरथ महाराज, बड़े शूर वीर थे दशरथ महाराज, बड़ा समृद्ध था, समृद्धि थी उनकी नगरी और राज्य, धन धान्य से संपन्न था, वह फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। धान्य खूब था, धान्य आवश्यक है, धान्य है तो देश समृद्ध है, धान्य है तो लोग जी सकते हैं। अन्नाद भवन्ति क्या भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न है तो लोग जी सकते हैं, खाएंगे जिएंगे। किसी भक्त ने कहा कि आपको भूख लगी है तो इंडस्ट्रियल टाउन है या जमाना भी आ गया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का, एक अग्रेरियन इकोनॉमी और दूसरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री में जो उत्पन्न होते नट्स एंड बोल्ट्स, आपको जो भूख लगेगी तो क्या आप नट एंड बोल्ट्स को पेट्रोल में डीप फ्राई करके नाश्ते में खा सकते हो, या ट्यूब और टायर को काट के उसको सैलड बनाया, सैलड फॉर यू सर लंच के लिए। तो अयोध्या में धन धान्य से समृद्ध थी वो नगरी, बड़े प्रसन्न थे सारे नागरिक। ओके, ये सब कुछ ठीक ठाक था ही, लेकिन वैसे दशरथ महाराज एक बात से बड़े उदास थे, दुखी थे। वो कौन सी बात? ये सब था और फिर कोई दुख और उदासीनता का कोई कारण हो सकता है? हाँ हाँ, एक कारण था, और वो कारण था उनका कोई पुत्रहीन थे। पुत्रहीनम गृहम शून्यम, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो घर क्या है? शून्य है, खाली है, रिक्त है, नहीं के बराबर है। तो दशरथ महाराज चिंतित थे इस बात से, कब होगा पुत्र, होगा कि नहीं, कब होगा, कब होगा, कब होगा। ऐसे नंद महाराज को भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जब वे बुजुर्ग थे, ही वॉज एल्डरली, इसलिए उनको कहते, दोनों भी महाराज हैं, जब भी बुजुर्ग होते उनको भी महाराज कहते हैं। तो वहाँ नंद महाराज ऐसे बुजुर्ग बने, कुछ वृद्धावस्था को प्राप्त थी की तैयारी हो रही, तभी उनको कृष्ण प्राप्त हुए। तो दशरथ महाराज को भी तब तक पुत्र नहीं हुआ था, तो उन्होंने विचार किया, क्यों न मैं एक विशेष यज्ञ करूं, अश्वमेध यज्ञ करूं, ताकि भगवान प्रसन्न हो के मुझे पुत्र का दान दे सकते हैं। योग है त्रेता योग, त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने की विधि यज्ञ। ध्यायतो विषयान् कृते ध्यायतो विष्णु, ध्यान ध्यान करते थे सतयुग में भगवान का, भगवत प्राप्ति के लिए। त्रेतायाम यजतो मख है, त्रेता युग में यज्ञ हुआ करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो दशरथ महाराज ने एक विशेष अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का विचार कर ही रहे थे, तो उन्होंने सभा बुलाई, अपने मंत्रियों को बुलाया। वशिष्ठ जी आए, और कौन, वामदेव आए, जाबाली आए, और उनके अष्ट प्रधान, आठ अलग अलग मंत्री, विशेष मंत्री और भी होंगे लेकिन विशेष आठ मंत्री थे, उनको बुलाया गया। और उस सभा में दशरथ महाराज अपना विचार प्रस्ताव रखे उनके समक्ष, मैं सोच रहा हूं एक अश्वमेध यज्ञ करूं ताकि पुत्र प्राप्ति हो जाए, आपका क्या विचार है? तो सभी ने कहा साधु साधु। तो सभी ने इस विचार का, इस प्रस्ताव का अभिनंदन किया, तथास्तु वैसे ही हो। तो फिर दशरथ महाराज ने वशिष्ठ मुनि और औरों को निवेदन किया कि आप यज्ञ की तैयारी करें। इसके लिए सामग्री चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना कुछ टॉम डिक हैरी का, कोई साधारण व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकते, कोई धनवान और बहुत बड़ी तैयारी, बहुत सामग्री। तो उस योग में तो संभव था, तो यज्ञ की तैयारी हो गई। विशेष पुरोहित चाहिए थे तो पुरोहित भी लाए गए, ऋष्य श्रृंग नामक, उसका विशेष उनका चरित्र समझाया है। उनको जहाँ भी वे रहते थे वहाँ से, वन में ही रहते थे, ऐसे थे वो ऋष्य श्रृंग, ऐसे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पिता को छोड़ के और किसी को नहीं देखा था। संसार तो कई प्रकार के योनियों से भरा हुआ है, कई सारे मनुष्य भी, लेकिन उन्होंने केवल अपने पिता को ही देखा था और किसी को नहीं देखा था। तो लेकिन थे बड़े विद्वान और कुशल, तो उनकी आवश्यकता थी। तो फिर कई उपाय ढूंढे गए हैं ताकि यह ऋषि श्रृंग उनको प्राप्त हो, पुरोहित के रूप में इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो उनको भी लाया गया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो अग्निकुंड प्रज्वलित हुए, कई सारे पुरोहित वेल क्वालिफाइड, मंत्र तंत्र विशारदः आहुति चढ़ा रहे थे। ये जब मैं कह रहा हूं तो मुझे साबरमती में ही अहमदाबाद में संपन्न हुए इस एक यज्ञ का स्मरण हो रहा है। शायद वही साल हो सकता है जब हम गए प्रभास क्षेत्र, तो हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, ठंडी के दिन थे, और 1008 कुंडीय, कितने कुंड, 1008 कुंड। हमने जब ये विज्ञापन एडवर्टीजमेंट वगैरह पढ़ी तो हम थोड़े देखने के लिए उत्कंठित हुए। तो जब गए वहाँ यज्ञ जहाँ संपन्न हो रहा था, तो एनीवे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ हमने एक ब्राह्मण को देखा। तो त्रेता युग में भी यज्ञ हुआ करते थे, और कैसे मंत्र तंत्र विशारद ब्राह्मण हुआ करते थे, और कलयुग में वैसे ऐसा यज्ञ संभव नहीं है, कई कारण है, उसमें एक कारण नॉट बीइंग ब्राह्मिन्स नॉट बीइंग क्वालिफाइड, गुणवान विद्वान सूची पवित्र ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे। तो कई सारे ब्राह्मण थे, एक को तो हमने देखा, पता नहीं और भी ऐसा करते होंगे। तो एक ब्राह्मण को देखा, हम हैरान हो गए, क्या देखा होगा हमने। उस ब्राह्मण के हाथ में बीड़ी थी, एक हाथ में अगरबत्ती, एक हाथ में से वो चम्मच था, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, दूसरे हाथ में बीड़ी। तो उन्होंने बीड़ी निकाली, हमने सब देखते क्या नेक्स्ट क्या करते हैं। हमने सोचा कोई दिया सलाई से उसको जला लेंगे, लेकिन शायद उन्होंने सोचा क्यों मैं दिया सलाई को खराब करूं, अग्नि जब सामने ही है। तो उस पंडित ने उसी अग्नि से क्या किया, अपने बीड़ी को जलाया। और नेक्स्ट स्वाहा 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 स्वाहा, और फिर तो सारे यज्ञ का सत्यानाश। वो जमाना कुछ अलग था, त्रेता युग, कलेर दोष निधे राजन, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कलेर दोष निधे राजन, दोषों का भंडार है ये कलयुग। तो हम लोग वहां जाते हैं तो यज्ञ संपन्न हो रहा है, दशरथ महाराज गाय दान में दे रहे, वस्त्र दान में दे रहे हैं, रत्न दान में दे रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं सभी को उदार दिल से। वो दान देते 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 वैसे ही एक समय ऐसा भी आया उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब दशरथ महाराज सब दे दिया, दान में दिया ब्राह्मणों को। इतने में एक ब्राह्मण आया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो दशरथ महाराज एक अलंकार पहने थे अपने कलही में, तो उसको उतारे और कहे प्लीज टेक दिस। आत्मनिवेदनम स्वाहा, समर्पण, सारा समर्पण भाव। तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो रहा था, हो गया। तो ऋषिश्रृंग ने प्रस्ताव रखा, पुत्रेष्टि, पुत्रेष्टि यज्ञ का यज्ञ भी संपन्न हो जाए। आप पुत्र की कामना करते हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ मैं यह उसका विधान होगा। तो उस यज्ञ में अब यहां पर वर्णन आता है, उस यज्ञ में नर नारिया तो या ऋषि मुनि तो पहुंचे ही थे, देवता आ गए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुनवंती दिव्यै सवै, भगवान की स्तुति करने वाले भगवान के सेवक बड़े बड़े देवता वहां पहुंचे उस यज्ञ में। अब जब यज्ञ होता है वैसे हम लोग कोई कलश रखते हैं और कलश में आवाहन करते हैं इस देवता का, मंत्र को उच्चारण करते हैं, ओके ये कलश में ये देवता, ये कलश अग्नि देवता, ये कलश वायु देवता, ये कलश ये देवता, वो फलाने देवता। लेकिन राजा दशरथ जब यज्ञ कर रहे थे तो स्वयं देवता वहां आके, 33 करोड़ देवता वहां पधार चुके हैं। और ये जब देवता एकत्रित हुए हैं उस समय आपस में उनकी एक इष्ट गोष्ठी होती है, जिसको औरों ने देखा सुना नहीं, अदृश्य। तो उस सभा में एक एक करके देवता समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? ओ जो रावण, जो राक्षस हम सबको परेशान कर रहा है, हमारा जीवन मुश्किल कर रहा है, आपने तो उसको विशेष वरदान दिया है, हमसे वो डरता नहीं, हमारा भय नहीं, उल्टे हम उसे भयभीत है। तो सूर्य सारे जगत को तो तपाता है, लेकिन रावण जहां है वह शीतलता प्रदान करता है। सूर्य को भय है, समुद्र जो क्षुब्ध रहता है, कई सारी लहरें तरंगे आंदोलित होती है समुद्र में, लेकिन वह रावण जब आता है तो भय के कारण वो क्षुब्ध समुद्र भी स्तब्ध बन जाता है। समझते, एक क्षुब्ध ए स्तब्ध, जैसे स्तंभ होता है, न हिल रहा है न डुल रहा है। तो समुद्र का भी डोलायमान होना समाप्त होता है जब रावण वहां रहता है, ऐसे समुद्र देवता ने कहा। तो एक एक करके बता रहे अपने अनुभव, और सभी कह रहे इसके वध की, इस रावण के वध का कोई उपाय खोजना चाहिए। क्या उपाय हो सकता है? तो वाह, ब्रह्मा जी थोड़ा सोचे और आइडिया, गुड आइडिया, उनको आइडिया आ गई। तो क्या आइडिया? तो उनको स्मरण आया कि उन्होंने ही, ब्रह्मा ने ही वरदान दिया है रावण को, या उसने मांग लिया, जैसे हिरण्यकश्यपु ने मांगे थे वरदान, रात में नहीं दिन में नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पशु नहीं, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं, कई सारे उसने सारा विचार किया था। लोग कैसे कैसे मरते हैं, आज तक लोग कैसे कैसे मरे हैं, उसका स्मरण कर करके, कोई अंदर मरता है, मैं अंदर नहीं मरना चाहता हूँ, कोई बाहर मरते हैं, बाहर नहीं मरूंगा, कोई हथियार से मारा जाता है, मैं हथियार से नहीं मारा जाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा, ये नहीं मरूंगा। तो वैसे ही हो, वहां पर भी ब्रह्मा ने ही अपनी जान छुड़ाने के लिए वैसे ही हो, बाबा छोड़ो छोड़ो ये तपस्या बंद करो, लेकिन मुझे वरदान दो। क्या वरदान है? तो वरदान भी दिए थे, जैसे हिरण्य कश्यप को, तो रावण को भी ब्रह्मा जी वरदान दे चुके थे। तो मैं इससे उससे इनसे पशु से पक्षियों से गंधर्वों से देवताओं से नहीं मारा जाऊंगा, ऐसा वरदान दीजिए। उसने सारी पूरी लिस्ट बनाई थी, लेकिन ब्रह्मा जी को याद आया कि उसने मनुष्य का नाम उस लिस्ट में नहीं लिखा था, और ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मनुष्य का नाम उसने लिखा ही नहीं, कि मनुष्य को तो ये तो मच्छर है, मनुष्य तो मच्छर है, ये तो नगण्य है। तो कुछ कीमत नहीं देता था मनुष्यों को। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अगर कोई मार सकता है, कोई वध कर सकता है इस रावण का, तो वो मनुष्य रूप में कोई प्रकट होता है, या मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला व्यक्ति ही इस रावण का वध करने के लिए सक्षम है, अन्यथा और कोई इसका वध नहीं कर सकता, मैंने तो वरदान दे चुके हैं। तो अब सोच रहे हैं, तो सभी सोच रहे कि क्या अगर भगवान ही प्रकट होते हैं, और वे भी पहले तो केशव धृता मीन शरीर हुआ है, वराह हुआ है, नरसिंह हुआ है, ये हुआ है वो, तो अभी अगर मनुष्य रूप में वे प्रकट होते हैं, तो उस रूप में इस रावण का वध कर सकते हैं। ऐसा देवता ब्रह्मा के साथ सोच ही रहे थे, इतने में सभी ने देखा कोटि चंद्र सूर्य समप्रभा ज्योति को उनकी ओर आते हुए देखा, और वो ज्योति जब अधिक निकट पहुंची, वो जो ज्योति ज्योति होती है, भगवान का शरीर ही इतना तेजस्वी होता है, भगवान के शरीर से ऐसी कांति निकलती है, कितनी कांति, कैसी कांति, कोटि सूर्य समप्रभा, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उस ज्योति में ज्योत मिलाने का कोई सोचते हैं, ब्रह्मलीन होने का, लेकिन हिरणमयी न पात्रयी न सत्यशा पिहितम मुखम, ऐसी प्रार्थना है, प्रभु प्रभु उस ज्योति को हटाइए ताकि मैं आपका भक्त, आपका दास, आपके चरणों का, आपके मुखमंडल का, आपके वक्षस्थल का, आपके इस सर्वांगों का दर्शन कर सकूं। उस ज्योति को हटाइए। तो प्रारंभ में तो देवताओं ने सभी ने ज्योति को देखा, लेकिन ज्योति के स्रोत तो भगवान है, तो फिर भगवान को देखा, गरुड़ पर विराजमान थे भगवान, पीतांबर वस्त्र पहने हुए भगवान, अजानुलंबित भुजो भगवान, चतुर्भुज भुजी भगवान, घनश्याम भगवान, कर्ण पर्यंतम, जिनके जिनकी आंखें कहाँ तक, कर्ण पर्यंतम, भगवान की आंखें विशाल विशाल अक्ष, जैसे कमल का खिला हुआ पुष्प, वैसे भगवान की आंखें, और खिली हुई आंखें मानो कानों तक पहुंच जाती है, कर्ण पर्यंतम। तो ये ब्यूटी का स्टैंडर्ड हुआ, तो फिर हम लोग नकल करते हैं भगवान की, और हम भी अपने आँखों को कहाँ तक, कर्ण पर्यंतम पहुँचाने का, कैसे, कुछ मेकअप, कुछ काजल, कुछ पेंटिंग से हमारी छोटी आँखों को विशाल दिखाना चाहते, अब कानों तक पहुँची हुई, हमको पता नहीं होते हुए भी भगवान की आंखें कैसी है, कई लोग भगवान की नकल करने का तो प्रयास होता है। तो ऐसे भगवान का दर्शन किए तो सभी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, और निवेदन किया है, देवताओं की ओर से ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आप प्रकट होइए, प्रकट होइए, मनुष्य रूप में प्रकट होइए। दशरथ के पुत्र बनिए, दशरथ के तीन पत्नियों के पुत्र बनिए, तो भगवान जो प्रसन्न थे, और उनके प्राकट्य का समय परित्राणा या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कब प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की होती है ग्लानी, और अभ्युथानम अधर्मस्य, और बढ़ता चढ़ता फैलता क्या है, अधर्म, तदात्मानम सृजाम्यहम। तो इन देवताओं का रिपोर्टिंग सुना क्या हाल चाल है इस ब्रह्मांड की, संसार की, इस पृथ्वी के लोगों की, कैसे सर्वत्र राक्षस या फिर उनके लीडर रावण और धर्म का ह्रास होने के सारे वचन देवता सुना रहे, तो भगवान समझ गए अब यदा यदा ही धर्म शकास संभवामी, क्या होगा, मैं प्रकट होऊंगा, मैं प्रकट होता हूं और मैं प्रकट होके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक रहूंगा और राज भी करूंगा, प्रजा को संभालूंगा। इतना तो करना स्वामी, बहुत कुछ किया वैसे भगवान ने वादा किया और भगवान वादे के पक्के हैं कि मैं प्रकट होऊंगा। तो जब अब स्वाहा 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 पुत्रेष्टि वो यज्ञ चल रहा है, तो एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुए, भगवान ही होंगे उस रूप में, और उनके पास एक पात्र था, तो हुआ दशरथ राजा को पास में आए, कम हियर राजा, तो उन्होंने ये पात्र दे दिया दशरथ महाराज को, जिस पात्र में खीर थी, पायस खीर थी, और इस पुरुष ने कहा कि ये खीर खिलाना अपने पत्नियों को। तो हुआ यज्ञ संपन्न, तो ये आहुति ही समापन हो रहा था, तब ये विशाल काय पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने खीर का पात्र दिया और कहा खिलाओ अपने पत्नियों को। तो राजा दशरथ ने जो खीर थी उसका आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, इसको तुम ग्रहण करो, तो जो बचा था उसके दो हिस्से किए और एक हिस्सा दिया सुमित्रा को, बचा था उसका आधा हिस्सा किसको दिया, कौन बच गई, कैकेयी को दिया, तो भी और एक हिस्सा बचा हुआ था, तो सुमित्रा को दोबारा, पहले उसको प्राप्त हुई थी खीर, लेकिन तीनों को खिलाने के बाद जो खीर बची थी तो पुनः वो खीर सुमित्रा को दे दी, तो आप अंदाजा अब कर सकते हो उनको जो दो पुत्र प्राप्त होने हैं उसका कारण उनको दो बार खीर मिली। तो अब जब तो भगवान अब प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए गर्भ में, तो गर्भवती कौशल्या, गर्भवती सुमित्रा, गर्भवती कैकेयी, तब देवता कि हम भी प्रकट होंगे, हम भी भगवान के लीला में योगदान देंगे, तो वे भी पुत्र प्रकट करने लगे। तो वैसे पुत्र, वैसे पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, ऐसी भी समझ है। तो देवता तो अलग अलग देवता अब प्रकट होने वाले हैं, ब्रह्मा जी बता भी रहे हैं। वैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे जमाई देते हैं, योनिंग कहते हैं, मैं जब एक समय जम्हाई दे रहा था तो मेरे मुख से जाम्बवान का जन्म पहले ही हो चुका है, ब्रह्मा जी ने कहा, जो जाम्बवान जो रिच थे, भालू थे, भालू के भालू सेना के जो नेता थे जाम्बवान, जिनकी गुफा भी है, हम लास्ट ईयर गुफा देखने गए थे, कहाँ पर, हाँ द्वारका से आगे गए, पोरबंदर, बंदर, पोरबंदर, पोरबंदर के पास जाम्बवान की गुफा, कि जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती और पुत्र सांब, सांब, तो वो तो ब्रह्मा ने कहा कि मैंने पहले ही जन्म मैं दे चुका हूँ जाम्बवान को, तो फिर और देवता भी, इंद्र ने जन्म दिया वाली को, सूर्य ने जन्म दिया सुग्रीव को, और अग्नि देवता ने जन्म दिया नील को, एक थे नील तो दूसरे थे नल, तो जो हुआ कर्मा, द कर्मा, कर्मा, कर्मा क्या, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के पुत्र बने नल, चीफ आर्किटेक्ट, जब वो ब्रिज बन रहा था ना, तो नल और नील, वानर तो ऐसे ही मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, तो नल और नील वहाँ उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वह फिर वायु देवता ने जन्म दिया है वायु सूनु, जय हनुमान। इस प्रकार सारे देवता भी जन्म दिए, जन्म लिए हैं, और अधिकतर भालू बने हैं, वानर बने हैं, तो अब समय बीत रहा, एक मास, दो मास, नौ दस मास हुए, लेकिन ये सारे प्रभु छह ऋतु तक गर्भ में रहे, छह ऋतु मतलब बारह मास, तो बारह मास जब बीत गए तो फिर चैत्र मास का ये क्या शुक्ल पक्ष ही होगा ना, शुक्ल पक्ष ही चला है, शुक्ल पक्ष के नवमी आज के दिन मध्याह्न के समय जय श्री राम, राम प्रकट हुए, जय लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रकट हो गए, जय भरत, भरत जी प्रकट हो गए, जय शत्रुघ्न, शत्रुघ्न प्रकट हुए। वैसे जब प्रकट हुए तो उनका कोई नाम नहीं था, उनका नामकरण हुआ, वशिष्ठ जी ने वहाँ जैसे कृष्ण बलराम का नामकरण किए, कौन, हाँ गर्ग मुनि, गर्गाचार्य कृष्ण बलराम का नामकरण किए, तो या वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं, तब फिर इस बालक का नाम ये राम कहलाएगा, ये लक्ष्मण, ये भरत, ये शत्रु, सुमित्रा बैठी होगी अपने दो पुत्रों को, कौन तुम कौन बन गए, लक्ष्मण आ गए, ये सोच रहे हैं हमारा नामकरण हो रहा है, हमारा नामकरण नहीं भगवान का, तो राम तो और कोई हो भी नहीं सकता। राम नाम किसका है? राम नाम राम का ही है। राम नाम और किसी का नहीं है। लक्ष्मण नाम किसका है? लक्ष्मण का है। हम रामदास बन सकते हैं लेकिन राम नहीं बन सकते। प्रभु जी भी कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं। तो बाल राम, राम कौन बने हैं? बाल राम। जैसे बाल कृष्ण तो बाल राम, फिर बाल लक्ष्मण, बाल भरत, बाल शत्रुघ्न, बड़े ही सुकुमार बालक, सारे सौंदर्य की खान और सभी के आंखों के तारे और प्यारे और दुलारे, ये चारों भ्राता। साथ में खेलते, वैसे चारों साथ में नहीं खेलते, या कभी खेलते तो कभी कभी वो दो टीम बन जाती उनकी, राम और लक्ष्मण की एक टीम और भरत और शत्रुघ्न की एक टीम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस प्रकार उनका पारस्परिक स्नेह विशेष, एक दूसरों के सभी के प्रति तो था लेकिन स्पेशल आकर्षण राम और लक्ष्मण के बीच में, और स्पेशल विशेष स्नेह प्रेम भरत और शत्रुघ्न के मध्य में। तो सुमित्रा का एक पुत्र कौशल्या के पुत्र के साथ और सुमित्रा का दूसरा पुत्र कैकेयी के साथ, इसीलिए शास्त्रों में कहा है रामम रामानुजम, एक राम है दूसरे रामानुज है। तो रामानुज कौन है? लक्ष्मण रामानुज। भरतम भरतानुजम, एक भरत है तो दूसरे भरत अनुज है। भरत अनुज कौन है? शत्रुघ्न। तो वे दो दो के दल बना के वे खेलते भी, और कभी कभी ऐसा भी अनुभव हुआ कि चारों को चार पालने में लिटाया तो है लेकिन थोड़े समय के बाद लक्ष्मण आ गए और राम के पालने में भी लेटे हैं, उनका पालना तो खाली, और शत्रुघ्न अपना पालना खाली करके भरत के पालने में लेटे हुए। दो पालने खाली है, दो भरे हुए, एक राम लक्ष्मण से, एक भरत शत्रुघ्न से। वन में भी गए तो दो गए, दो पीछे रह गए। और जब विश्वामित्र आए, उन्होंने दो पुत्रों की मांग की, राम को दो मुझे, लक्ष्मण को दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हो? इन बालकों को आप शायद नहीं जानते होंगे, ये बालक तो उन षोडशीय वर्ष के हैं, मतलब 16 साल के भी नहीं है, 16 साल में एक साल कम, मतलब 15 साल के ही है। और इनको आप ले जाओगे वन में और ये करेंगे आपके यज्ञ की रक्षा? नहीं 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 नहीं, आप चाहते ही हो कोई रक्षक, कोई गार्ड्स, कोई सिपाही आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, तो मैं मेरी सेना भेजता हूँ, अक्षोहिणी डिवीजन भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं राम और लक्ष्मण को नहीं भेज सकता। नहीं नहीं, हमें वही चाहिए। विश्वामित्र वे सक्षम है, बलवान है, वे शूर है, ये वीर है। अरे अरे ये पुत्र तो मेरे है, मैं अधिक जानूंगा कि तुम जानोगे। तो वैसे विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को जानते थे, राम लक्ष्मण के तत्व को जानते थे, उनकी भगवत्ता को वे जानते थे। जिस भगवत्ता को राजा दशरथ नहीं जान पा रहे थे, उनका वात्सल्य था, वात्सल्य भाव के कारण वे नहीं समझ रहे थे राम की भगवत्ता, द गॉडहुड, और उनका इतना शक्ति सामर्थ्य। और उनके पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है, ऐसी उनकी समझ, ऐसा उनका वात्सल्य। लेकिन विश्वामित्र को और कोई समझ थी, ये कैसे शूरवीर है, भगवान है, और ये क्यों प्रकट हुए हैं? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए प्रकट हुए हैं, तो होने दो शुभारंभ। यहां मेरा यज्ञ होता है, वह कई सारे असुर आते हैं, उनके संहार यही करेंगे, और इसी के साथ उनका गौरव होगा। तो वैसे वशिष्ठ भी जानते थे राम लक्ष्मण की भगवत्ता, तो फिर वशिष्ठ भी अनुमोदन किए विश्वामित्र के प्रस्ताव का, और फिर मानना पड़ा, मान गए दशरथ महाराज, और अपने दो पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को, विश्वामित्र के साथ जाने दिए। इस प्रकार अब तक तो अयोध्या में ही जो रहे थे ये राजकुमार, राजपुत्र दशरथ नंदन, अब वे वन में गए विश्वामित्र के साथ। और वहां वे तैयार रहते थे अपने धनुष बाण के साथ, एवर रेडी, जब चाहे कोई आता तो आ गया, राक्षस नहीं आया, कौन आया? राक्षसी आ गई। जैसे कृष्ण ने भी पहला जो बोनी की, उनका बिजनेस है ना, दिस इज हिज बिजनेस, किलिंग इज हिज बिजनेस, तो बोनी हो गई। किसके साथ? पूतना के साथ, स्वाहा, इसको आहुति चढ़ाई। तो यहाँ राम भी राक्षसी के साथ, ताड़का के साथ। और उसी समय वो कौन, और ये हिरन बना था, मारिच भी आया था वहां ताड़का के वध के बाद। तो राम ने ऐसा बाण चलाया, तो क्या हुआ, मारिच को वहां से लंका में लैंडिंग हुआ, उसका हवा के मार्ग से। तब जब रावण ने प्रस्ताव रखा था, तुम बन जाओ हिरण, चलो हम क्या करते हैं, राम का वध करते हैं या सीता का हरण करते हैं, तुम सहायता करो, क्या कहा, राम के साथ युद्ध,
वो नाम सुनते ही वैसे मारीच को स्मरण, नो नो नहीं, उसका स्मरण था, उस बाल ने कहां तक पहुंचा दिया था। तुम नहीं जानते हो रावण उस राम के शूरता को, वीर्य को, सामर्थ्य को, शक्ति को। ऐसा प्रस्ताव मत रखो। मरीचि को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था राम के सामर्थ्य का, रावण नहीं जानता था, न तो जानना चाहता था। तो तुम नहीं जाओगे? तो रावण ने कहा फिर मैं तुमको यही मार देता हूं। नहीं 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 प्लीज। फिर मरीचि ने कहा कि मरना तो है तो वहां भी जाके मुझे हिरण बनना है, तो प्रभु राम आएंगे अपना बाण चलाएंगे तो मेरा वध वहां तो होने का रावण ने प्रस्ताव रखा है ही, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे यही मारने के लिए तैयार है रावण, तो अच्छा है कि राम के हाथ से मरना अच्छा है। यस 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 यस, आई एम रेडी, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो वो मारीच भी अनुभव किया था। तो बोनी के बाद ये मरीच का भी लिस्ट में नाम था, टॉप ऑफ द लिस्ट। तो वहां से फिर जनकपुर भी गए, विश्वामित्र ले गए राम और लक्ष्मण को जनकपुर। वह सीता प्रतीक्षा कर रही थी, सीता का स्वयंवर। सीता राम की ही सीता हो सकती है, सीता और किसी की नहीं हो सकती। सीता तो कोई साधारण जीव तो नहीं है, अहमदाबाद की कोई दुल्हन या नारी। सीता तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। सीता और राम की शाश्वत जोड़ी है, वे नित्य वधु और वर है। सीताया पतये नमः, राम को नमस्कार। कैसे राम को नमस्कार? सीताया पतये नमः, सीतापति राम को नमस्कार। तो सीता का और कोई पति होना संभव था ही नहीं, जो कई राजा आए और गए भी, अपना सारा सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई उठा नहीं सका उस धनुष को। अभी अभी हमने पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इतना भारी था वो धनुष, 300 लोग नहीं उठा पाते उसको, कोई उठाते नहीं। वैसे एक संदूक ट्रॉली जैसा, ठेला जैसा था, उसी पर रख के वो उसको कहीं ले आ जाते, बस मुश्किल से उस पर रख देते, फिर उसको कहीं ले जाना है तो कोई उठा नहीं पाते, 300 लोग नहीं उठा पाते। फिर जब तो राम, तो वैसे विश्वामित्र ने प्रस्ताव रखा था, जनक राजा इन बालकों को वो धनुष दिखा सकते हो क्या? सो वाई नॉट, देखने दो। उनको लगा कि ये बालक जो प्रदर्शनी में कुछ देखते हैं, सब देखना चाहते हैं। तो राम लक्ष्मण देख ही रहे थे उस धनुष को। तो राम आगे बढ़े
देखा भी और आगे बढ़े और धनुष को पकड़ लिए और उठाए। बाएं हाथ का खेल, दोनों हाथों से नहीं, और राजा आए तो दोनों हाथों से उठाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था वो धनुष। लेकिन राम ने कैसा उठाया, कहते जैसे हाथी उठाता है गन्ने का शुगर केन, हम लोग जूस पीते हैं लेकिन जूस केन से बनता है, ईख से बनता है, केन समझते ना, तो हाथी जैसे ईख को या गन्ने को उठाता है, कोई विशेष शक्ति का उपयोग करना पड़ता है हाथी को, ऐसे उठाता है खेल खेल में, ऐसे उठाता है हाथी, एक नहीं बंडल का बंडल उठा सकता है वो हाथी, गन्ने का बंडल। तो भगवान ने ऐसे ही उठाया और उठाते उठाते प्रत्यंचा चढ़ाने का शायद प्रयास भी हुआ होगा, इतने में वो धनुष के दो टुकड़े हो गए। और उस समय जो ध्वनि हुई, आवाज हुई, मानो धरनी कंप हुआ, और वहां जो उपस्थित लोग थे सारे धड़ाम करके गिर गए, सब जगह गिरने लगे, कुछ ही खड़े थे, बाकी सब उस ध्वनि ने और सब शॉक लिटाए गए। तो वह फिर पता चला स्वयंवर अब सीता का उस व्यक्ति के साथ विवाह होगा जो इस धनुष को उठा सकता, उठाना मतलब उसको प्रत्यंच चढ़ाना भी, वो डोरी होती है, उठाने में सामर्थ्य और फिर उस प्रत्यंच चढ़ाने में और भी शक्ति। तो सीता आई माला लेके और पानी ग्रहण हुआ, तो इस लग्न मंडप या विवाह मंडप में एक विवाह नहीं हुआ है, कितने विवाह हुए, चार विवाह हुए, चार भाइयों के जन्म भी एक ही दिन हुए थे, जन्म और विवाह भी एक ही दिन में एक ही स्थान। तो वो दृश्य भगवान फेरे लगा रहे और सब विधि पूर्वक हो रहा है विवाह यज्ञ संपन्न, और फिर बारात लौट आई। तो बुलाया था वैसे जनक राजा, दशरथ महाराज और सभी माताएं, सभी मंत्री, कई सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी जनकपुरी पहुंचे थे, जिनके उपस्थिति में ये विवाह संपन्न हुआ। तो फिर अयोध्या आते हैं, रास्ते में परशुराम के साथ एनकाउंटर, दो राम लड़े हैं, एक परशुराम और दूसरे जय श्री राम। और फिर अयोध्या में रहने लगे, फिर एक दिन की बात है, दशरथ महाराज आईने में देख रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, कुछ पके हुए बालों को देखा,
gray hair.
मतलब सूचना मिल जाती है, अब मृत्यु कुछ अंतिम दिन कुछ दूर नहीं है, समाचार आता है, ये बाल समाचार देते हैं, और कई बार बाल कान के पास ही सफेद बन के बताते हैं कान में, सुनो 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 सुनो, मुझे कुछ लोग आजकल सुनना नहीं चाहते तो सफेद बालों को पुनः रंग बदल देते हैं, ए शट अप। उस बाल का मुख बंद कर देते हैं, लेकिन वैसे मुख बंद होने वाला नहीं है, अंदर तो सफेद है, बाहर से जो शायद दिखावा करे कि दांत गिर रहे तो लोग क्या करते, पुनः तुम्हारा दांत दांत गिर रहे, मतलब प्रभु जी तो बहुत कुछ कुछ समझाते हैं, अब सूप पीने का समय आ गया। लेकिन हम पुनः दांत और फिर खिचड़ी खाना चाहते हैं या और कुछ खाना चाहते हैं, आंखों में कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा, बुढ़ापा आ गया, तो मतलब अंतर्धान, अभी अंतर्मुख हो जाओ, बाहर तो बहुत देखा, अब क्या करो, थोड़ा अंदर देखो। लेकिन पुनः क्या करते लोग, ऑपरेशन करा करा के देखने की चीज है, बार बार देखो, देखते रहते, आई ऑपरेशन कैंप होता, आई ऑपरेशन कैंप। तो हम तो कहते हैं कि कोई आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो फ्री में करो सही, लेकिन उन लोगों से वादा करवाओ जब तुमको आंखें दी जाएगी तो उन आंखों से क्या करो, भगवान को देखो, देखोगे हाँ हाँ देखूंगा तो फिर ऑपरेशन होगा, नहीं तो अंधे रहो। बापा जी बसना नको दाऊ डोला त्या होनी आंधळा बरासमी, तुका मणे तुकाराम महाराज कहते प्रभु क्या करो, इन आंखों से अगर मैं पाप देखने वाला हूं तो अच्छा है कि तुम क्या करना, मुझे अंधा ही रखो। पापा जी वाणी नको माझे मुखा त्या होनी मुका बरासमी, आप समझ रहे, फिर तुकाराम महाराज कहते इस मुख से अगर कुछ पाप के वचन निकलने वाले हैं तो अच्छा है कि मैं मुझे आप गूंगा ही बना दो, मुका द डम, मुखा मुका, इस मुख से अगर कुछ पाप के वचन, उससे अच्छा है कि मुझे गूंगा ही बना दो। तो हुआ फिर दशरथ महाराज ने तो उस संकेत, बाल सफेद संकेत मिला उनको, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, चलो मेरा पुत्र बनेगा राजा, और कौन सा पुत्र, राम बनेगा राजा। कब होगा राज्याभिषेक, कल होगा राज्याभिषेक, थोड़ा झटपट करना चाहते थे, झटपट या कहीं झटपट चल रहा है पढ़ा, तो उसकी तैयारी जब हो ही रही थी, फिर वहां से प्रभु जी शायद सुना रहे थे, इसके पहले भी सुनाया होगा आप, कई दिनों से आप सुन रहे हो भगवान की लीला कथा,
सुनाओगे?
नो नो, कैन से फ्यू वर्ड्स.